हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका श्रीमद् भगवत गीता के सार एसेंस ऑफ भगवत गीता या भगवत गीता में भगवान हमें क्या समझा रहे हैं हर एक अध्याय में, सो इसकी हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। और अब तक हम लोग तीन अध्यायों की चर्चा कर चुके हैं। पहला अध्याय जो सैन्य निरीक्षण कहलाता है, जहां हमने देखा कि कैसे दुर्योधन की कूटनीति हुई, पांडवों के चिन्ह विजय के, भगवान का भक्त वत्सल रूप, और फिर अर्जुन के द्वारा कारण दिए गए कि युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने समर्पण किया, भगवान ने ज्ञान दिया, पहचान दी अर्जुन को, कौन हो अर्जुन तुम, और फिर उसके बाद भगवान ने बताया अन्य मार्ग कैसे कार्य कर सकते हैं, और फिर भगवान ने बुद्धि योग का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि कैसे व्यक्ति कार्य करता है बुद्धि योग में, वो बताइए, तो फिर भगवान ने उसके लक्षण बताए। और फिर जब भगवान ने इतना बुद्धि योग वर्णन किया तो अर्जुन को लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, सो मुझे तो केवल बस ज्ञान लेना है। तो फिर तीसरे अध्याय में उसने प्रश्न कर लिया, कल हमने सुना कि भगवान ने बताया कि एक्शन होना चाहिए, साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए, काम भी करना है, कर्म करना है, लेकिन ज्ञान के आधार पर। तो ये फिर हम लोगों ने कल प्रमुखता उसको सुना। अब तीसरे अध्याय में भगवान ने वर्णन किया कि ज्ञान लेना चाहिए, किसका ज्ञान, भगवान का ज्ञान लेना चाहिए, भगवान का वर्णन हुआ। तो अब चौथे अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि कौन सा ज्ञान है जो भगवान ने वर्णन किया कि ज्ञान से आप कर सकते हो, आप काम को वश में कर सकते हो, इंद्रियों को वश में कर सकते हो, तो वो दिव्य ज्ञान है क्या। तो अब ये चौथा अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, तो इसको हम लोग अब चर्चा करेंगे कि ये चौथा अध्याय जहां भगवान क्या वर्णन करेंगे। इस अध्याय में बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है, भगवद गीता के एक एक अध्याय का वर्णन करते जा रहे हैं और उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। सो भगवान इस अध्याय में अपने बारे में बताने वाले हैं, मैं कौन हूं, मैं कैसे भगवान हूं। फिर भगवान वर्णन करने वाले हैं, ये वर्णन करने के बाद कि ठीक है ये है, तो कैसे कर्म होने चाहिए, आपके काम कैसे होने चाहिए, तो ये चीजें, और ये जानकर आप प्रैक्टिकली कैसे जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तो ये चीजें हम आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। सो ये चौथा अध्याय है तो आज अभी प्रारंभ करेंगे और आप सब इसको देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये जैसे हम जानते हैं कि भगवद गीता पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप मतलब जैसे है वैसे ही, कोई बदलाव नहीं। और इसको दिया है, जो हम लोग शिक्षाएं ले रहे हैं इसकी, ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। सो उनकी शिक्षाओं के आधार पर हम अब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भगवद गीता में भगवान ने क्या क्या कहा है। तो अब दिव्य ज्ञान का वर्णन भगवान करने वाले, चौथा अध्याय जहां ज्ञान होगा। तो इसको प्रमुखता पांच भागों में हम बांट सकते हैं 42 श्लोकों को इसके। आशा करते हैं कि आप सब जैसे जैसे हम लोग भगवद गीता पढ़ते जा रहे हैं, एक एक अध्याय में कितने श्लोक हैं इसको याद करते जाइए। 3 अध्याय हो गए हैं, पहले में कितने थे, दूसरे में कितने थे, तीसरे में कितने थे और चौथे में कितने थे। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन फिर भी हर अध्याय में कितने हैं हमें पता होना चाहिए। तो इसमें 42 श्लोक हैं। पहला विभाग जो 10 श्लोकों का है, पहले 10 श्लोकों में भगवान अपने बारे में दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। भगवान अपने ही विषय में इस ज्ञान को प्रकट करते हैं बड़े सुंदर श्लोकों के द्वारा। तो ये पहला विभाग है। दूसरा विभाग, जब हमें ज्ञान मिल गया उसको जीवन में लगाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, पालन कैसे करना है। सो केवल भगवान, ये भगवद गीता देखिए बड़ी प्रैक्टिकल बुक है, ये जान लीजिए। सो भगवद गीता ऐसे नहीं है कि भगवान ने बस ज्ञान दे दिया और ये नहीं बताया कि अरे इसको अप्लाई कैसे करना है। ये तो इस तरह है कि आपके हाथ में कोई मशीन दे दी, आपको चलाना ही नहीं आता है तो आप क्या करोगे, नुकसान करोगे। इसीलिए भगवान ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ भगवान ये भी दे रहे हैं ज्ञान कैसे जीवन में अपनाना है, जिसे विज्ञान कहते हैं। आप सबने विज्ञान सुना है, साइंस। सो दो शब्द होते हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज और विज्ञान मतलब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो इसीलिए अप्लाई करना। और फिर तीसरा विभाग, कर्म को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हमारे जीवन में यही होता है, अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, उसको इतना मिल गया मुझे नहीं मिला, मैंने इतना प्रयास किया लेकिन कुछ आया नहीं, या फिर अचानक मेरे जीवन में बहुत कुछ आ गया, इतना सारा धन आ गया कहाँ से आ गया, इतना लोग मुझे प्रेस कर रहे हैं, प्रसिद्धि आ गई कहाँ से आ गई। ये कर्म को समझना बहुत जरूरी है। और फिर अगला विभाग है जहां वर्णन किया जाएगा कि ये जो हम दिव्य ज्ञान तक पहुंच रहे हैं, इसको ले जाने में क्या क्या चीजें मदद करती हैं। तो कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। अब एक यज्ञ हम जानते हैं, जैसे हम लोग यज्ञ सुनते हैं हमारे मन में आता है वो आग जल रही है, स्वाहा करना, वो एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन अन्य यज्ञ भी भगवान बताते हैं, जैसे जो विद्यार्थी हैं वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ बताया गया है भगवद गीता में। तो ऐसे सभी यज्ञों का वर्णन चौथे विभाग में करेंगे भगवान 25वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक। और अंतिम विभाग 34वें श्लोक से 42 तक सार, इस अध्याय का पूरा सार होगा। और 34वां श्लोक ही बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां ये बताया जाएगा कि अब दिव्य ज्ञान की बात हो रही है, दिव्य ज्ञान मिलता कहां से। तो दिव्य ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया, उसको समझाया कर्म के माध्यम से कैसे कर सकते हैं क्या चीजें, और अंत में कैसे मिलेगा। तो ये पूरा चौथा अध्याय हम लोग अब जिसकी चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ पर है। तो सबसे पहला विभाग है 10 श्लोकों का, जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान। अच्छा, भगवान के विषय में जानने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है भगवान को अपने बारे में ही बताने की। भगवान तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं उनको। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि भारत में नरेंद्र मोदी जी को सभी जानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी कहीं जाएं और लोग उनको कौन हो आप, को बताया कि मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, जिस देश में आप रह रहे हो उसका मैं प्रधानमंत्री हूं, तो भगवान को अपने बारे में बताने की क्या आवश्यकता हुई? इसकी आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि भगवान का विषय सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग विषय है। लोग बाकी सब चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो वो चीजों को जल्दी स्वीकार नहीं करते, वो प्रश्न करते हैं। बाकी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा होता है, मैथमेटिक्स के विषय में आप जान लेते हो, आप साइंस के विषय में उसको स्वीकार कर लेते हो, जियोग्राफी के बारे में लिखा है उसको स्वीकार कर लेते हो, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। और उसके कारण बहुत सी गलत थियोरीज आ जाती हैं। जैसे थियोरीज क्या क्या आती हैं भगवान के विषय में, कि भगवान है कौन, भगवान एक प्रकार की लाइट है, और ये भगवान है वो भगवान है, अलग अलग थियोरीज आ जाती हैं भगवान के विषय में। तो इसलिए स्पष्ट जानना, भगवद गीता बहुत स्पष्ट कर देती है चीजों को। क्या स्पष्ट कर रही है कि ज्ञान कृष्ण के विषय में, भगवान कौन है, कृष्ण है, कैसे भगवान है वो भी वो वर्णन और खुद ही वो बता रहे। और भगवद गीता ये क्या है, ये ऐसी ग्रंथ है जो सभी के लिए स्वीकार्य है। ये किसी और ऐसे नहीं कि केवल थोड़े से समय के लिए किसी ने लिए, सभी के लिए स्वीकार्य। इसलिए भगवान इसके माध्यम से अपना ज्ञान हमें दे रहे। तो बहुत जरूरी है हमें भगवान के विषय में जानना, कौन है भगवान, कितना सारा कंफ्यूजन है हमारे मन में, उसको निकाल देना चाहिए। क्या क्या सभी भगवान हैं, क्या एक भगवान है, या फिर भगवानों का कोई एक कमिटी है, क्या है भगवान? तो इसलिए भगवान इसको बहुत स्पष्ट करते हैं। तो ये पहला विभाग है। तो भगवान प्रारंभ करते हैं जो ज्ञान वो अर्जुन को देने जा रहे हैं भगवद गीता का, उसके विषय में कहकर कि भगवद गीता कहां से आई और इसको जानने का या इसको समझने की योग्यता क्या है। तो भगवान भगवद गीता बताते हैं कि भगवद गीता ये ऐसे नहीं कि अभी जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं अर्जुन, अब ये पहली बार बोल रहा हूं। तो आप सब भी जान लीजिए कि भगवद गीता ये कोई केवल 5000 साल पहले बोली गई ये ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता तो लाखों करोड़ों साल से है। और कहां से है, भगवान बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राहा मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। कि तो मैंने बहुत बहुत साल, करोड़ों साल पहले विवस्वान को दिया था ज्ञान, और फिर वही ज्ञान अब मैं तुम्हें पुनः दे रहा। क्यों दे रहा हूं तुम्हें अर्जुन? भगवान दो योग्यता बताते हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें ये योग्यता चाहिए भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने के लिए, भगवद गीता समझने के लिए। तो भगवान ने कौन सी योग्यता बताई? दो योग्यता बताई। पहली, भक्तोसी में सखा चेती, कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। मतलब दो चीजें, कि एक भगवान का भक्त होना और भक्ति में भी भगवान से एक विशेष संबंध होना, तब हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। अर्थात भक्ति या भगवान के भक्त हुए बिना भगवद गीता को समझना कैसे है? मानो जैसे एक शहद की बॉटल रखी हो जिसका ढक्कन बंद हो, आपको उसको खाना है तो आप उसको बाहर से ही चाट रहे हैं, क्या स्वाद आएगा आपको पता चलेगा कि शहद का क्या स्वाद है? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसको खोलकर उसको मुंह में डालना होगा। सो अगर भक्त बने बिना हम भगवद गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा है कि बिना ढक्कन खोले हम बाहर से ही वो जो बॉटल है उसको चाटकर और शहद का स्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता। तो इसीलिए पहली चीज, भक्त होना जरूरी है। और दूसरी चीज, भक्त होने के साथ भगवान ने क्या कहा, भक्तोसी में सखा चेती, भक्ति में भी क्या होना है, हमारा संबंध होना चाहिए भगवान से। तो क्या संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए? हम भगवान के दास हो सकते हैं, हम भगवान के मित्र हो सकते हैं, हम भगवान के माता पिता हो सकते हैं, या हम भगवान के प्रेमी हो सकते हैं। किसी भी रूप में हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए हमारा संबंध है, बस भक्ति के द्वारा हम उसको फिर से जागृत करते हैं। सो ये आवश्यक है हमारे लिए, सो ये हमें जरूर करना चाहिए। तो ये भक्तोसि में सखा चेती। तो इस तरह भगवद गीता के प्रारंभ को भगवान ने कहा, और भगवद गीता समझने के योग्यता भी भगवान ने दी। सो उसको जानकर फिर आगे भगवान अब ज्ञान दे रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले अर्जुन दे चुका हूं, और फिर क्या हुआ, इक्ष्वाकु इत्यादि राजाओं को दिया, लेकिन धीरे धीरे वो गायब हो गया ज्ञान, और इसीलिए तुम्हें फिर से देना पड़ रहा है। सो जो भगवद गीता है ये दरअसल राजाओं के लिए भी थी। भगवद गीता का ज्ञान राज ऋषियों के लिए भी था, साधुओं के लिए भी था। तो दो प्रकार के एक ऐसी परंपराएं आती हैं, एक एक राजा दूसरे को ज्ञान देते, दूसरा राजा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे राज ऋषियों की परंपरा, और दूसरी साधुओं की, एक साधु दूसरे को, दूसरा साधु तीसरे को, तो ऐसे ज्ञान वही ज्ञान आता रहता है। तो भगवद गीता का ज्ञान राजाओं को क्यों दिया जाता था, राजाओं को तो राज्य करना है, उनको क्या लेना देना भगवद गीता से, तो उनके लिए बहुत जरूरी था। देखिए आजकल भी हमारे जितने नेता हैं उनको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान क्या था, भगवद गीता का ज्ञान था कि जिसके आधार पर वो जो नागरिकों पर राज्य कर सके, उनकी रक्षा कर सके, और वो जिस काम के बंधन में फंसे हैं, जिसका वर्णन हमने तीसरे अध्याय के अंत में किया, बहुत बड़ा शत्रु, उस पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए बहुत जरूरी था राजाओं को इस चीज को जानना, भगवद गीता को जानना, साथ ही साथ भगवद गीता के आधार पर जीवन के मूल्यों को समझाना। ये मनुष्य जीवन के कुछ मूल्य हैं, हम लोग बस बन गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन जो मूल्यों पर जिया जाता है, तो इसीलिए वो ज्ञान भगवद गीता में प्राप्त होता है। तो राजाओं का कर्तव्य था कि अपने नागरिकों को ये दे, और साथ ही साथ उन्हें एक सफलता का मार्ग प्रदान करें, मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता, और ये भगवद गीता के आधार पर हो सकता था। इसीलिए भगवान ने ज्ञान इमं विवस्वते योगम विवस्वान को दिया, सूर्य देव को दिया सबसे पहले, और फिर विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु इत्यादि, विवस्वान मन वे प्राहा मनु इक्ष्वाक वे ब्रवीत, ऐसे ज्ञान आता रहा। तो ये भगवद गीता का इतिहास है, मानव समाज में करोड़ों सालों से है वो। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता केवल 5000 साल पहले आई है। तो जब भगवान ने ये कहा, कृष्ण ने, देखिए अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से तो कई लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो, लेकिन अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो अर्जुन को एक संशय हो गया मन में, अर्जुन ने सोचा कि हे एक मिनट कृष्ण, एक मिनट रुकिए, आपने कहा कि आपने ज्ञान विवस्वान को दिया था जो करोड़ों साल पहले थे। कृष्ण ने कहा हाँ। तो अर्जुन ने कहा रे आपकी और मेरी उम्र तो इतनी है, हम लोग समान इक्वल एज के हैं, और आप कह रहे हो कि आपने लाखों करोड़ों साल पहले दे दिया ये ज्ञान, ऐसे कैसे हो गया। सो अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों किया, अभी अभी भगवान कह चुके अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम सब कुछ जानते हो, तो फिर अर्जुन ने प्रश्न कैसे कर दिया कि भगवान आपने पहले कैसे दे दिया, आप तो अभी अभी मेरे साथ पैदा हुए, मेरे साथ बड़े हुए, फिर आपने कैसे दे दिया। तो अर्जुन का संशय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अर्जुन को संशय नहीं है ये जान लीजिए, ये संशय वो हमारे लिए प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि आगे आने वाले लोग ऐसा प्रश्न उठाएंगे भगवान के विषय में। तो पहला कारण अर्जुन का है कि अर्जुन उन सारे आने वाले संशयों को समाप्त कर रहा है कि भगवान आप ही बता दीजिए, आपसे अच्छा कौन बता सकता है। दूसरा कारण, अर्जुन चाहता था कि भगवान अपने विषय में कहें, तो इसलिए कुछ प्रश्न पूछा ऐसा कि भगवान तुरंत अपने विषय में बता रहे मैं कौन हूं। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि कैसे ये आप कह रहे हो इतने साल पहले, कैसे हो सकता है, आप और हम तो एक उम्र के, कृपया बताइए। तो अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान बोले। तो जब भगवान कहते हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो ये जानना चाहिए कि हमारे लिए भगवान की जो वाणी है बहुत शुभ है, केवल हमारे लिए व्यक्तिगत तौर से नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के लिए भगवान की जो वाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ है। और इसलिए जितने भी भक्त होते हैं वो बड़े प्रेम से, हृदय से भगवान की पूजा को, भगवान की अर्चना को, या भगवान के द्वारा कहे गए ऐसे वाक्यों को अपने हृदय में स्थापित करते हैं, या कहना चाहिए कि वो पूजा करते हैं ऐसे वाक्यों की जो भगवान कहते हैं, और इसीलिए बारंबार और सुनना चाहते हैं। आप सोचिए अर्जुन कहां पे खड़ा था, युद्ध शुरू होने वाला है, शंख बज चुके हैं, बस अब तीर छूटने वाला है। ऐसा हो गया था कि जब शंख बज जाते हैं दोनों भागते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, तो शंख बज गए, दोनों भागने तैयार हैं, सबने अपने अपने तीर कमान तैयार कर लिए हैं, भीष्म देव ने ऐसे हाथ रोक दिया, रुक जाओ, कोई महत्वपूर्ण बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण आ गए हैं वहां पर, तो इसीलिए उन्होंने रोक दिया। और उनके रोकने के कारण फिर युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। तो युद्ध इसलिए नहीं हुआ, और सब इस समय देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, भगवान को सुन रहे। तो अर्जुन जो अब इस समय युद्ध करना चाहिए उसको, अर्जुन को, तो वो युद्ध छोड़कर अब ये प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, और वो ये भी चाहता है कि जितने भी असुर हैं वो जान लें कि कृष्ण ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये दिव्य हैं और ये तीनों गुणों से परे हैं, हमारी तरह सीमित नहीं है इस जगत में। और इसीलिए अर्जुन ने इस कार्य को कहा। सो भगवान अपना वर्णन शुरू करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन मेरे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये कैसे आपने पहले दे दिया, तो उन्होंने कहा बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना, हे अर्जुन मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सारे जन्म याद हैं, बस इतना ही अंतर है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब भगवान बताते हैं कि क्यों ऐसा है कि मुझे सब याद है तुम्हें याद नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है अर्जुन, इसीलिए मुझे याद रहेगा, क्योंकि एक दृष्टि से ना तो मेरा जन्म होता है ना मैं मरता हूं, क्योंकि मैं दिव्य स्तर पर हूं। तो फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, ये कैसे हो गया, अजन्मा जन्म लेते हैं, असीमित सीमित हो जाते हैं, तो अजन्मा कैसे जन्म लेते हैं? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं जन्म लेता हूं लेकिन वो दिव्य है। और भगवान की जन्म की क्या विशेषता है, जैसे एक वैदुर्य मणि होती है, वो एक पत्थर ही है, मणि है, लेकिन अलग अलग रंग बदलती रहती है, लेकिन रहता एक ही है। इसी तरह भगवान अलग अलग रूप लेते हैं लेकिन हैं एक ही, और क्योंकि वो एक ही हैं इसीलिए उन्हें अपने सारे जन्मों का बातें याद हैं, क्या किस में मैंने क्या किया था, वो एक ही है। लेकिन हम एक नहीं है, हमारे कई जन्म हो चुके हैं, वही शरीर नहीं है हमारा, वही हमारे रूप नहीं बदले हैं, हमारे तो कई शरीर बदल चुके हैं, इसलिए हमें कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। लेकिन फिर भी जब भगवान आते हैं तो ऐसा लगता है हमारे ही तरह है, तो ये कैसे समझें साधारण मनुष्य। तो इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है, जिसमें लिखा है कृतवान किल कर्माणि सह रामेन केशव अतिमर्त्यान भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। वो कहते हैं कि कृतवान किल कर्माणि, अलग अलग कार्य करते हैं भगवान आकर, खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, भगवान बलराम जी के साथ आकर करते हैं। और क्या होता है, अतिमर्त्यान भगवान, वो भगवान है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन गूढ़ा कपट मानुषः, कुछ लोगों के लिए वो छुपा लेते हैं अपने आप को, लोगों को लगता है साधारण है, लेकिन जो भक्ति की आंखों से उन्हें देखते हैं वो जान जाते हैं कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो ऐसे भगवान का वर्णन है, भगवान ये देख रहे हैं, ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भगवान बहुत श्रेष्ठ हैं। भगवान क्यों सब जानते हैं, क्योंकि भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, है वही, और कौन समझ सकता है उनके सारे अलग अलग रूपों को, कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है कि भगवान बहुत दिव्य स्तर पर हैं, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। केवल शास्त्र पढ़कर, किसी ने वेद उठा लिए, पढ़ लिया, श्लोक याद कर लिए और सोचा मैंने भगवान को जान लिया, बिल्कुल नहीं, भक्ति के द्वारा हम जान सकते हैं। और ऐसी भक्ति जहां हम सदैव भगवान के साथ रहने की कामना करें, जैसे अर्जुन जब भी भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं, चाहे नारायण के रूप में आए तो वो नर के रूप में आते हैं, और इसीलिए जिस रूप में जब भगवान ने सूर्य देव को ज्ञान दिया था तो अर्जुन खड़े थे वहीं पर, लेकिन क्योंकि वो भगवान नहीं है इसीलिए उन्हें याद नहीं, लेकिन भगवान को याद रहता है। तो इससे हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझ सकते हैं कि जीव न तो भगवान है और न ही कभी भगवान बन सकता है। जीव जीव है, भगवान भगवान है। तो हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, क्यों नहीं बन सकते, एक दिन हम भी भगवान हो जाएंगे, हम भी कुछ कर लेंगे बड़ा। नहीं, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता। भगवान कोई पद नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है भगवान कि हम भी भगवान एक दिन बन जाएंगे। नहीं, भगवान भगवान है, वो व्यक्ति है, वो कोई पोस्ट नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन आप जो प्रधानमंत्री व्यक्ति है वो नहीं बन सकते। तो इसी तरह अगर पद होता ये भगवान का कि इलेक्शन जीतकर वो भगवान बने हैं, तो फिर कोई भी बन सकता था, लेकिन ये कोई पद नहीं है, भगवान भगवान है, इसलिए कोई भगवान नहीं बन सकता। कई लोग धोखा देते हैं, आइए हमारे पास, हम आपको 6 महीने में भगवान बना देंगे। धोखा है। ध्यान कीजिए अपने ऊपर, आप ही भगवान हैं, अंदर देखिए, आप ही भगवान हैं। धोखा है। कोई भगवान नहीं हो सकता, भगवान भगवान है। हम केवल भगवान के दास हो सकते हैं, और ये बुद्धिमानी है कि हम इस चीज को समझें, क्योंकि भगवान ये बहुत श्रेष्ठ हैं। जब भगवान आते हैं इस जगत में तो कैसे आते हैं, भगवान बाध्य होकर नहीं आते, जबरदस्ती नहीं आते, आत्ममायया, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं। कभी उनका शरीर ऐसे नाशवान शरीर नहीं होता, ना ही उन्हें भौतिक गुण कभी सताते हैं। भगवान जैसे हम लोग देखते हैं कि सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त हो जाता है, तो सूर्य का अस्त हमारे लिए होता है, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं है। जैसे मान लीजिए इस समय अंधकार हो गया है यहाँ पर, लेकिन अब अगर अमेरिका में देखेंगे तो अंधकार नहीं होगा, अन्य स्थानों में देखेंगे तो अंधकार नहीं होगा, वहां सुबह होगी। तो सूर्य एक जगह अस्त होता है, दूसरी जगह उदय हो जाता है, मतलब सूर्य कभी नाश नहीं होता। इसी तरह भगवान का भी जो आना और जाना है वो इसी तरह है। तो फिर भगवान आते क्यों हैं, कैसे आते हैं, कब आते हैं, श्री कृष्ण कब आते हैं, तो इसका भी हमें जानना चाहिए। तो भगवान वर्णन करते हैं कि कब आते हैं। तो कब आते हैं, क्यों आते हैं भगवान, आत्म माया या अपनी इच्छा से आते हैं, कोई बाध्य नहीं करता। कब आते हैं, द्वापर युग के, ये 4 युग होते हैं आप सब जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो द्वापर युग के जो 28वां चतुर्युग होता है, द्वापर युग मतलब 28वें चतुर्युग के 7वें मनु के 28वें चतुर्युग के कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं। सो 14 मनु होते हैं, उनमें से सातवां मनु जो होते हैं, फिर उससे उसके 28वें चतुर्युग में ये प्रकट होते हैं। तो कोई कह सकता है क्या इसी में आते हैं और कभी नहीं आ सकते? भगवान को कोई नियम नहीं बाध्य करता, भगवान चाहे तो और बार आ सकते हैं, लेकिन साधारणता उसी समय आते हैं। और किस लिए आते हैं? भगवान बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कि अर्जुन मैं आता हूं क्यों? जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म समाप्त होने लगता है, तो उस समय अर्जुन मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और किस लिए आता हूं, क्यों आता हूं? इस संस को फिर से धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आता हूं, भगवान ये कहते हैं। और साथ साथ केवल धर्म स्थापित करने आते यदा यदा धर्म से ग्लानिर भवति भारत नहीं, भगवान आते हैं कि जब जो असुर होते परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो सही धर्म को स्थापित करने आते, क्या होता है धीरे धीरे धर्म समाप्त होता है। जैसे आज का समय है, किसी से धर्म की बात कीजिए तो उसको लगता है अरे ये सब आप कौन सी पुरानी बातें कर रहे हो, हम मॉडर्न हैं, हम एडवांस्ड हैं, ये धर्म की बात मत कीजिए हमसे। तो ये क्या हो गई, ये धर्म की हानि। जहां पहले लोग धर्म का पालन करना एक बहुत गर्व की बात मानते थे कि बहुत बड़ा आदर सम्मान है कि अगर कोई धर्म का पालन कर रहा है, धार्मिक व्यक्तियों को इसीलिए आज भी भारत में मान है। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन करना ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़े आदर की बात है कि ये व्यक्ति धर्म का पालन करता है। और इस कलयुग में तो ये और बड़ी बात होती जा रही है कि जो धर्म का पालन करता है तो लोग सोचते अरे, लेकिन कई लोग सोचते जरूरी नहीं है हमारे लिए, ये उन लोगों के लिए ठीक है। नहीं, भगवान तब आते हैं जब ऐसी बातें लोगों के मन में आ जाती हैं, जब ऐसी चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं कि लोग कहते हैं मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कुछ आनंद चाहिए किसी चीज से। इस तरह है कि आपको गाड़ी दी जा रही है, बहुत नई मर्सिडीज गाड़ी ये लीजिए, लेकिन आप कहें नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो खिलौने वाली कार चाहिए, मैं उसी से खेलूं, वो अच्छी है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमें कैसे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान किस लिए आ रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं। कौन से धर्म की, ये भी हमें जानना है। भगवान कौन से धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं? क्या भगवान एक ऐसे साधारण धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं जो बदलता रहेगा? नहीं, भगवान ऐसे धर्म की स्थापना के लिए आते हैं जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत धर्म है, उसकी स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो ये भगवान वर्णन करते हैं कि वो आते हैं। और कैसे ये जान लें हम लोग भगवान आते हैं, तो किस प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं? तो हम लोग समझ सकते हैं जब हम भक्ति और श्रद्धा से हम पालन करते हैं। भक्ति हमारे अंदर हो, ज्ञान हो और श्रद्धा हो, उसके द्वारा हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्ति को अपने हृदय में लाएं। तो जीवन में आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, भगवान के दिव्य स्वभाव को समझना है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, बस। और प्राप्त क्या होगा? भगवान का धाम। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ना पहुंचे वहां तक, तो उसमें बताया कि नहीं चिंता मत करो, सुरक्षा है, भगवान सुरक्षा करते हैं। अगर हम फिर से इस जगत में गिर भी जाएं तो भगवान हमें फिर से उठाते हैं। इसीलिए आवश्यकता है भक्ति को बढ़ाने की, उसे हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि भक्ति बढ़ने से अपने आप ये सारी चीजें हो जाएं। इस जगत में जब तक हम रहते हैं, भक्ति नहीं करते हैं भगवान की, तो क्या होता है, हमारे अंदर आसक्ति बढ़ती है, राग क्रोध आता है, डर पैदा हो जाता है, वीत राग भय क्रोध। तो ये राग हो जाता है, भय हो जाता है, क्रोध हो जाता है, ये सब क्या है? ये भौतिक लक्षण है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। कि इसका क्या सॉल्यूशन, क्या हम लोग इसी में पड़े रहेंगे, आसक्ति होगी, क्रोध आएगा, बहुत तकलीफ होगी, हमें डर लगा रहेगा हर समय, कुछ हो ना जाए, कुछ चला ना जाए, तो क्या यही करते रहेंगे हम लोग? तो इसलिए एक सॉल्यूशन ढूंढना है उसका। तो सॉल्यूशन क्या है इन सब चीजों को हम लोग जो कर रहे हैं, तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है कि हम सबसे पहले एक ऐसा नियमित जीवन जिए जो हमारे लिए आवश्यक है। मतलब हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की आवश्यकता है जिसमें कुछ नियमों का पालन हो, लेकिन वो भी अपने मन से नहीं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के निर्देशानुसार, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के निकट है, ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों को सही समझ सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अपने अपने ऊपर संयम दिखाया है, दिखा दिया कि वो संयम कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के हमें मार्ग निर्देशन लेना चाहिए। तो डिसिप्लिन लाइफ हो, मार्ग निर्देशन में हो, और उद्देश्य क्या हो, भगवान की शरण जाना, तभी हम ये जो राग है, ये जो क्रोध है, ये जो भय है, इससे हम दूर जा सकते हैं, वरना हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। इसीलिए भगवान की शरण लेना बहुत आवश्यक है। तो ये भगवान ने अपने विषय में जब बता दिया कैसे वो आते हैं, जन्म कर्म दिव्य है, यदा यदा ही धर्मस्य, ये सब बताने के बाद, तो अब अगला विभाग 11वें श्लोक से जाते हैं कि इसको कैसे जीवन में हमें अपनाना है, इसको कैसे पालन करना है। अब हमें पता तो चल गया कि ठीक है, भगवान का ये ज्ञान है, लेकिन कैसे जीवन में इसको हम पालन करें, अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन, तो अब उसकी चर्चा भगवान करेंगे। तो एप्लीकेशन करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि भगवान जिनको हम जानने का, जिनकी सेवा का प्रयास कर रहे हैं, वो हैं कौन। जैसे हमने कहा, कई लोग कहते हैं प्रकाश हैं, कई लोग कहते हैं कि कुछ हृदय में बैठे परमात्मा हैं, तो कौन है? तो भगवान को जानने के तीन स्तर हैं, तीन स्तर से हम भगवान को जान सकते हैं। पहला स्तर जो ब्रह्म कहलाता है, दूसरा स्तर परमात्मा, और तीसरा भगवान। तो ब्रह्म मतलब एक भगवान को ब्रह्म ज्योति प्रकाश के रूप में जानना, वो भी है, सही है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। फिर दूसरा, भगवान को हृदय में स्थापित परमात्मा के रूप में जानना, वो भी सही है लेकिन पूर्ण नहीं है। और तीसरा स्तर है भगवान को उनके सुंदर श्याम सुंदर रूप में जानना और उनकी सेवा में लगना, तो ये पूर्णता है। तो तीन स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जिसका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। तो फिर जानकर भगवान को समर्पण क्यों नहीं कर लेते लोग? अभी हमने इतना सुन लिया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, सब छोड़कर सरेंडर कर देना चाहिए कृष्ण को, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोग अलग अलग तरह की पूजा में लगे हैं, उन्होंने अपने एक ऑप्शंस निकाल लिए हैं, किसके आधार पर, कि वो देखते कहां हमें जल्दी फल मिल रहा है। तो इसीलिए या तो कृष्ण की पूजा करें या फिर किसी अन्य देवता की पूजा करें। सो जब कृष्ण की पूजा करते हैं और देवता की पूजा में अंतर क्या है, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण ध्रुव महाराज का है। ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो गए। किससे दुखी हो गए? अपने पिता से। क्या किया उनके पिता ने? कुछ नहीं, बस ये गोदी में बैठना चाहते थे। ध्रुव महाराज चले गए अपने पिता के पास, आपकी गोदी में बैठने की इच्छा, पिता है, लेकिन उनके पास में ही खड़ी थी सौतेली माँ, धक्का मार दिया, अधिकार नहीं है। ध्रुव को बहुत गुस्सा आया, अपनी माँ के पास गए, माँ ने कहा भगवान के पास जाओ। ध्रुव गए वन में, बहुत तपस्या की, 6 महीने में भगवान प्रकट हुए। और जब ध्रुव गए तो उनके हृदय में इच्छा थी कि मैं अपने पिता से, पिता क्या, उनके भी पिता से बहुत बड़ा राज्य लेना चाहता हूँ, तो जब भगवान आएंगे सामने, मैं उनसे ये कहूंगा कि मुझे बहुत बड़ा राज्य दीजिए। इस भावना से ध्रुव महाराज गए, लेकिन जब वहां पहुंचे और भगवान के दर्शन हुए 6 महीने बाद तपस्या करके, तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा? ध्रुव महाराज ने कहा, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कि मैं बहुत कृतार्थ हो गया, कोई वर नहीं चाहिए मुझे। तो ये ध्रुव महाराज कहते हैं, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अब आपको देख लिया, संतुष्ट हो गया, तो तो जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते ही कृष्ण हृदय को शुद्ध कर देते हैं। लेकिन वहीं हम अन्य देवताओं की पूजा इत्यादि करते हैं तो ये सोचकर कि जल्दी फल मिलेगा, सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएंगे तो हमें जल्दी से शादी हो जाएगी, मंगलवार को गणेश जी के पास जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, बुधवार को ये, तो ये जब कुछ मांगने की भावना, ये व्यापार है। और जब हम ऐसा व्यापार करते हैं और ये सोच करके बस मैंने किया जल्दी मुझे फल मिल जाना चाहिए, लेकिन उससे हृदय शुद्ध नहीं होता। देवी देवता आपको कुछ दे देते हैं, फिर आप क्या करते हो, खाते हो फिर बंधन में। जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ने आपको कहा भाई बीमार हो ये खाना नहीं, और आप जाते हो अपने माता पिता के पास कि मुझे ये खाने को ले चाहिए, माता पिता कहते बिल्कुल नहीं बीमार है और तकलीफ होगी नहीं खाने को देंगे, तो फिर आप जाते हो कि कोई अपने फ्रेंड को बोलते हो जरा चुपके से लेकर आ खा लेंगे, तो आपका फ्रेंड ला कर देता, तो आपको लगता है मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा, लेकिन क्या फ्रेंड ने अच्छा कार्य किया? आप बीमार हो, आपके लिए आवश्यक नहीं, आपको नहीं खाना चाहिए, माता पिता सही कह रहे हैं, लेकिन फिर आप सोचते हो कि मेरा फ्रेंड ज्यादा अच्छा। तो इसी तरह देवी देवता है कि वो ये नहीं देखते कि सही क्या है गलत क्या है, इसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो दे देते, लेकिन भगवान बिल्कुल नहीं, माता पिता की तरह है जो हमें बहुत संभाल कर रखते हैं। तो जब कृष्ण इतना हमें संभालते हैं, इतनी हमारे ध्यान रखते हैं, अगर हम उनकी पूजा करते हैं, तो क्या हम उनकी पूजा कर कर भी, जैसे देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा कर कर भी हम क्या यहीं पर बने रहेंगे या कोई और स्थान है जाने का? सो ये जान लीजिए कि हमारे जीवन में जो भी हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के फल से मिलता है, लेकिन कृष्ण कर्म के फलों से दूर हैं। उनको कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता कि इस जगत में वो आ गए, उन्होंने युद्ध करा दिया बहुत बड़ा, इसीलिए वो नरक में है। ये एक कोई धर्म में ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया इसीलिए वो नरक में है, और फिर शुद्ध होकर फिर आएंगे तब वो कुछ और साधु बनेंगे। ये सब ये अज्ञान के लक्षण है। तो इसीलिए भगवान ये कर्म के फलों से बिल्कुल मुक्त है, कोई उनको लेना देना नहीं है। ये कर्म के फल तो हम सबके लिए हैं इस जगत में, तो इसलिए हमें भक्ति का पालन करना बहुत आवश्यक है। यही अर्जुन को भी उन्होंने एडवाइस किया, और अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन चीजों को समझो। भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कि अर्जुन तुम्हें जानना चाहिए कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये अर्जुन के लिए नहीं है। फिर जान लीजिए भगवान जैसे मानो हमें देखकर बोल रहे हो, तुम्हें जानना है कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, और इन चीजों को अगर जाने तो फिर हम बहुत अच्छे पथ पर चल सकते हैं। तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार जब हम कर्मों की बात कर रहे हैं तो किसको किससे पता चलेगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कहां से ज्ञान ले? परंपरा से। भगवान ने प्रारंभ में कहा एवं परंपरा प्राप्तम, हमने दो परंपराओं का वर्णन किया, साधुओं की और राजऋषियों की। सो ज्ञान हमेशा परंपरा से ले। और दूसरा, भगवान ने अर्जुन को ही क्यों दिया ज्ञान सीधे? क्योंकि ये ज्ञान भगवान चाहते थे हम तक पहुंचे, तो उसको दे रहे हैं ताकि उससे फिर वो आगे आ सके। तो इसीलिए अगर हम अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जैसे अर्जुन को लाभ हुआ भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान का, हमको भी लाभ हो सकता है। और इसीलिए क्या लाभ हो सकता है? हम फंसेंगे नहीं, बंधन में नहीं फंसेंगे, हम कार्य में भी, कर्म में भी अकर्म को देख सकेंगे। ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट भगवान ने कहा कि सी एक्शन इन इन एक्शन एंड इन एक्शन इन एक्शन, कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो। अब ये सुनने में थोड़ा सा भ्रमित लगता है, भ्रम होने वाला लगता है, बहुत सरल है। तीन कर्म हमने बताए, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो कर्म क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार कार्य किया जाता है, लेकिन आसक्ति बनी होती है, और हम कुछ अच्छी चीजें चाहते हैं कि इस जगत में पैसा आ जाए, सुंदर रूप आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये कर्म है। विकर्म क्या है? विकर्म है वैसे जो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं। शास्त्रों में मना है, हर शास्त्र में मना कर दिया, ये नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना, हम फिर भी करेंगे, विकर्म है। और उसका फल क्या होता है? बुरा फल आता है, नरक जाना पड़ता है, या अगले जन्म में हम बीमार पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, बहुत सारी चीजें। और तीसरा है अकर्म। अकर्म का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा में लगना, सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना, अपनी इच्छा के लिए, अपने आनंद के लिए ना करना। और इसका फल क्या होता है? हम दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। और उस व्यक्ति के लक्षण क्या है जो दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है? उस व्यक्ति के लक्षण है कि वो कार्य करता है लेकिन उसको कोई आसक्ति नहीं होती है, वो फलों से एकदम विरक्त है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और बहुत महत्वपूर्ण, संतुष्टि होती है हृदय में। आज हम बहुत से काम करते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन वो संतुष्टि हृदय में नहीं है। लेकिन जब हम दिव्य स्तर पे कार्य करते हैं, पूर्ण संतुष्टि होती है, आत्म संयम होता है, जिसको हम खो बैठे हैं, आत्म संयम होता है, द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है, बहुत स्थिरता आ जाती है जीवन में। और कैसे रहता है व्यक्ति? जितना आवश्यक है उतने की इच्छा करता है, बहुत ज्यादा की इच्छा नहीं, ये दिल मांगे मोर नहीं, वो इतना सरल में इच्छा करता है। और इस तरह से वो अपना जीवन जीता है और दिव्य स्तर पर बना रहता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमने देख ली कि कैसे दिव्य कर्म इत्यादि होते हैं, तो ये कहाँ कैसे पहुंचते हैं? ये यज्ञों के द्वारा। सो हम आपको बता रहे थे कि कई प्रकार के यज्ञ हैं। तो जैसे देवताओं की संतुष्टि के लिए एक यज्ञ किया जाता है, या फिर जब हम सुन रहे हैं इस समय आप, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। विशेषतः जैसे जो जीवन प्रारंभ के जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनके लिए वो यज्ञ बताया गया, मतलब उनको सतत सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और जो घर में रह रहे हैं उनके लिए यज्ञ क्या है? दान देना, द्रव्यमय यज्ञ। तो वे लोग अच्छे कार्यों के लिए दान देते हैं। योग का भी यज्ञ होता है, जो लोग हठ योग इत्यादि का पालन करते हैं, अष्टांग योग का करते हैं, वो योग यज्ञ है। या फिर तपोमय यज्ञ, तपोमय मतलब बहुत तपस्या करना, तो वो भी एक यज्ञ होता है। तो ऐसे कई यज्ञ हैं। और जब आप अध्ययन कर रहे हो तो ये भी यज्ञ, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, दरअसल ये यज्ञ हो सकता है। पढ़ना भी यज्ञ हो सकता है। कब? जब हम उस पढ़ाई को भगवान से जोड़ दें, जब हम थोड़ा सा कुछ शास्त्रों से भी सुनना प्रारंभ करें, तो वो भी हमारे लिए पढ़ाई एक यज्ञ हो जाएगा। और अब बड़ा महत्वपूर्ण चीज अंतिम भाग में हम देखते हैं कि जहां कैसे ये ज्ञान मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो भगवान कहते हैं कि कैसे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें किसी व्यक्ति के पास जाना होगा। कौन से व्यक्ति के पास? कोई भी व्यक्ति जिसने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि मैं बहुत महान हूं, आओ मेरे पास, नहीं। जिसने सत्य को देखा है, जो तत्वदर्शी है, उसके पास आपको जाना है। और किस लिए जाना है? ज्ञान लेने, वो ज्ञान देंगे, लेकिन आपको भी कुछ लेकर जाना है। तीन उपहार आपको ऐसे व्यक्ति के पास ले जाने चाहिए जो सत्य को जानता है, जो आपको ज्ञान दे सकता है। तीन गिफ्ट जरूर देने चाहिए उसको। क्या गिफ्ट है वो तीन गिफ्ट? पहला गिफ्ट है उपहार, पहला गिफ्ट है पूछना, इंक्वायरी, जिज्ञासा। तो मतलब हम जब जाएं तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं जानना चाहता हूं, ऐसे नहीं कि बस ऐसे घूमते घामते चले गए। तो जिज्ञासा ही पहला उपहार लेके जाना है। दूसरा नम्रता, बहुत नम्र भाव में जाना चाहिए, ये जानकर कि ये मुझे सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, ये जानकर नहीं कि मैं बहुत अच्छा जानता हूं, अब भी दो प्रश्न पूछूंगा इनके पास उत्तर ही नहीं होगा, बहुत नम्रता से। और तीसरा सेवा के भाव में, तो इसको भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। तो ये तीन उपहार लेकर जाओ तब क्या होगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश आपको मिलेगा, ज्ञानी न तत्वदर्शिनः, वो लोगों ने सत्य देखा है वो आपको सत्य समझा सकते हैं। सो ये हमारे लिए मार्ग है कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं जो आध्यात्मिक गुरु हों। सो हमें ज्ञान कब मिलेगा, जब हम एक ऐसे गुरु, प्रमाणिक गुरु की शरण लेंगे, तब हम कभी भी मोह में नहीं पड़ेंगे। और ये जो सागर है पूरा दुखों का, उसको बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में, उनसे हमारे संबंध के विषय में, ये हमारे जो कर्म के फल है उनको समाप्त कर देते हैं। कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जो मुझे अभी मिल गया ये बदला जा सकता है कि नहीं, या आगे जो आने वाला है वो बदला जा सकता है कि नहीं, पीछे मैंने कर्म कर दिए वो बदले जा सकते हैं या नहीं। सब बदला जा सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि चार प्रकार के कर्मों के फल होते हैं, एक अभी जो आए नहीं है, दूसरे जो आ गए हैं अभी, तीसरे बस आने ही वाले हैं, चौथे बीज रूप में है, थोड़ा समय लगेगा। ये चारों प्रकार के कर्मों के फल भक्ति के द्वारा समाप्त हो सकते हैं, ये बताया गया इस अध्याय में। और यहां पर बताया गया कि कोई भी चीज हमें अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है तो हमें अंततः भक्ति करनी ही होगी, भगवान ये कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञान इसका समापन कहां होता है, भक्ति में, योग भक्ति में, तो अंततः तो भक्ति करनी ही होगी। और जब हम उस भक्ति को स्वीकार करेंगे तब हम बड़ी अच्छी तरह से अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। और कौन है जो दिव्य ज्ञान ले सकता है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कौन है जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीन गुण चाहिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पहला गुण चाहिए कि वो श्रद्धा हो उसके अंदर, दूसरा गुण चाहिए उसके अंदर समर्पण होना चाहिए, तीसरा गुण आत्मसंयमी, इंद्रियों वश में होनी चाहिए। तो तीनों गुण अगर हैं तो बहुत जल्दी दिव्य ज्ञान होगा। पहला कि हम कृष्ण भावनामृत में काम करें ये जानकर कि कृष्ण को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। दूसरा हमारा समर्पण, हमारा भाव, समर्पित भाव होना चाहिए। किस लिए? बहुत अच्छे से भक्ति करें और भगवान के नाम का जप करें। जैसे आप में से कई लोग हर रोज सुबह जुड़ रहे हैं मेडिटेशन की क्लास में, करीब 40-50 स्टूडेंट्स आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ठीक 6:30 बजे हम लोग शुरू करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन के विषय में चर्चा करते हैं, हम आपको कुछ टिप्स भी दे रहे हैं कैसे आप फोकस बढ़ा सकते हैं, मेमोरी बढ़ा सकते हैं। आज हमने मेमोरी बढ़ाने पर चर्चा की थी और पहली चीज आपको बताई थी कि कैसे आप मेमोरी को स्ट्रांग शार्प कर सकते हैं। सो आप में से जो लोग नहीं आ रहे हैं या आपको नहीं पता है मेडिटेशन के बारे में, जो हम लोग सुबह 6:30 बजे से 7:15 बजे तक करते हैं, सो आप लोग आज से उस ग्रुप को ज्वाइन करके कल से आप आ सकते हैं, कल सुबह से। तो उसमें हम ये मेडिटेशन जो यहाँ बात हो रही है कि भक्ति करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपने मन को समर्पण करना, उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा है आत्मसंयम, इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि जब इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तब हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं भक्ति में, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए और इंद्रिय संयम होना चाहिए। और अगर श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर, समझिए हम कहें कि नहीं कुछ नहीं देखेंगे, होगा नहीं होगा, तो फिर भक्ति में हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कहा गया है कि जो लोग पशुओं के समान हैं उनको शास्त्रों के ज्ञान में कोई रुचि नहीं होती है। या फिर अगर उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान, वो लेते ही नहीं है ज्ञान, अगर ज्ञान ले भी लेते हैं, समझ लीजिए कुछ दो चार श्लोकों को उन्होंने पढ़ लिया, कुछ एक शास्त्र को पढ़ लिया, उसमें विश्वास श्रद्धा नहीं होती है। और कभी कभी श्रद्धा भी हो सकती है लेकिन वो भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की सेवा में विश्वास नहीं रखते। तो ऐसे लोग ये भक्ति करने के लिए अयोग्य हैं। सो इसलिए हमें भगवान अंत में भगवद गीता के इस अध्याय में समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिसने ज्ञान ले लिया दिव्य ज्ञान, किसी प्रकार का कर्म प्रभावित नहीं करता। उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए, वो कर्तव्य करता है, लेकिन कैसे? दिव्य ज्ञान में रहकर। तो भगवद गीता के जो उपदेश हैं उसको अगर हम जीवन में पालन करेंगे तो क्या होगा, हम हर प्रकार के संशय से दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दिव्य ज्ञान के प्रभाव से। तो इसलिए जितने भी मन में संशय हैं, अगर उनसे दूर होना है, भगवद गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। और जब ऐसा करते हैं, कार्य में लाते हैं, हम उस ज्ञान को लेकर फिर उसके आधार पर कार्य करते हैं, तब क्या होता है, हम आत्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं और ये जो बंधन है, ये जो कष्ट है हमारे जीवन में, इनसे बड़ी आसानी से हम दूर चले जाते हैं। तो ये चौथे अध्याय में प्रमुखता भगवान ने ये वर्णन किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमने प्रयास किया कि समय पर समाप्त करें ताकि आप सबके प्रश्न उत्तर को भी ले सकें, क्योंकि समय नहीं रहता है, सो हो नहीं पाता। सो आप में से जो लोग प्रश्न पूछना चाहें, सो ये चौथे अध्याय का सार था कि हम भगवान को जाने, कर्मों को जाने, विकर्म को जाने, अकर्म को जाने, शास्त्र के आधार पर जीवन प्रारंभ करें, कुछ गुणों को उत्पन्न करें, अपने अंदर वो शक्ति उत्पन्न करें जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल कर सकें। सो ये चौथे अध्याय का सार आपके लिए हमने प्रस्तुत किया। आप सबके जो प्रश्न हैं उनको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। सो पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ओके, नम्रता, आपका क्या प्रश्न है?
प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हमारा पढ़ाई भी जो है वो यज्ञ हो सकता है अगर हम उसे भगवान से जोड़े तो जैसे हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, या जो आईएएस या जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो लोग इसी तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम भगवान से कैसे जोड़ें? और दूसरा प्रश्न ये है कि जो हमारी डेली रूटीन्स होते हैं जैसे सोना, खाना, ये कर्म के किस कैटेगरी में आती हैं?
थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। और वैसे आपके प्रश्न नम्रता बहुत अच्छे रहते हैं, आप एकदम सोच समझ कर और जेन्युइनली ज्ञान लेने के लिए प्रश्न करते हैं। सो पहला प्रश्न था कि कैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि पढ़ रहे हैं तो उसको यज्ञ कैसे बनाएं? प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने ज्ञान से ये प्रूव कीजिए कि कृष्ण सबसे बड़े डॉक्टर। अगर आप इंजीनियर हैं तो अपने ज्ञान से ये प्रूव कीजिए कि कृष्ण सबसे बड़े इंजीनियर हैं। तो पढ़ते समय अगर हमारा उद्देश्य ये हो कि ठीक है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा भी ये जो केमिस्ट्री फिजिक्स है ये आया कहाँ से है, हम उसको जानने का भी प्रयास करें। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाई करते हैं कि चलिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल गए, पानी बन गया H2O। तो साइंस के द्वारा हम लोग ये प्रमाण कर लेते हैं कि पानी मतलब H2O, लेकिन पानी बना नहीं सकते। हाइड्रोजन आया कहाँ से, ऑक्सीजन आया कहाँ से वातावरण में, विज्ञान एक जगह पर रुक जाता है। तो जो यज्ञ बनाना चाहते हैं वो उसके बियॉन्ड जाएं कि ठीक है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसको पता था कि वातावरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? जब जब ये बनाया गया तो मनुष्यों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो किसने ये व्यवस्था बना दी? किसी ने तो सोच समझ कर किया होगा। उस ब्रेन को ढूंढने का प्रयास करें। तो जब हम उस ब्रेन को ढूंढने का प्रयास करते हैं तब हम अपने स्टडीज को यज्ञ बना रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि हम लोग डेली जो खाते हैं जो कार्य करते हैं तो कर्म विकर्म कैसे पता चले कि वो क्या है, किसमें आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। सो हाँ, उसके लिए भगवान ने 17वें अध्याय में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो जो भी आपका प्रश्न भगवान उत्तर दे चुके हैं, तो भगवान ने 17वें अध्याय में वर्णन किया है कि किस प्रकार का भोजन हमें कैसी तरह की चीजों की ओर ले जाता है। तो निश्चित हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो भी कर्म विकर्म में आता है। जैसे हम इवन अगर साधारण भोजन खा रहे हैं, कोई नॉनवेज नहीं खा रहे, वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो भगवत गीता के कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि वो भी पाप है। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व खेल विषय भुंगते ते त्वघम पाप ये पचंती आत्मा कारणात्, कल हम लोग ने सुना था। तो वो भी पाप हो सकता है, तो कैसे उससे बचें, कैसे हम उस कर्म विकर्म से बचकर अकर्म करें। तो बड़ा सरल है कि जैसे हमने बताया कि आपकी पढ़ाई में आप भगवान को लाइए, ऐसे अपना भोजन हम जो करते हैं तो सरल है। कल हमने वर्णन किया था, अगर आपको याद हो, चित्र भी देखा था कि भगवान को अर्पण कर दें, तो अर्पण करने से क्या होगा, वो कर्म की जगह अकर्म बन जाएगा। अकर्म का अर्थ क्या होता है, भगवान की संतुष्टि के लिए किए गए कार्य। सो निश्चित हम लोग भी कर्म विकर्म में फंसते हैं। हम पाप वेजिटेरियन भी खा रहे हैं तो पेड़ों को मार रहे हैं, पेड़ों में भी तो प्राण है, तो उसका तो कर्म फल लग जाता है, इसीलिए हम उसको अर्पण करके उस कर्म फल से दूर जाते हैं। तो 17वें अध्याय तक आप अगर रुकें तो ये निश्चित उसमें बहुत विस्तार से आएगा। ओके अनंत।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस में 1 ईयर हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होंगी जो डेवलप करनी है। तो मेरा क्वेश्चन था कि भक्त की क्या क्वालिटीज होती हैं और उसे एज ए स्टूडेंट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं।
भक्त की क्वालिटी और एज ए स्टूडेंट, राइट? ओके, सो प्रश्न है कि भक्त की क्या क्वालिटीज होती हैं और उसको एज ए स्टूडेंट हम क्या डेवलप कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। भक्त की एक प्रमुख क्वालिटी होती है कि वो कृष्ण को अपना सब कुछ मानता है। सो अगर हमें भक्त बनना है तो भक्त बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। पहली योग्यता हमें श्रद्धा चाहिए कि कृष्ण भगवान हैं और उनको प्राप्त करना या उनके जीवन, उनके आधार पर, उनकी शिक्षाओं के आधार पर जीवन जीना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना है, तो भक्त की ये क्वालिटी है। दूसरा, भक्त कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे वो कृष्ण भक्ति से दूर चला जाए। वो सारे ऐसे कार्यों को त्याग देता है जो उसे भक्ति से दूर ले जाते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यत इति विश्वासो गुप्त तृप्ते भरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड विधा शरणागति। तो कैसे हम गुण, क्या लक्षण हो, तो हमारे अंदर हमें गुण उत्पन्न करना है कि अनुकूलस्य संकल्प, जो भी फेवरेबल है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति में, हम उसको लेंगे। तो एज अ स्टूडेंट हम उसको कैसे पालन करें, एज ए स्टूडेंट हम पालन करें कि क्या चीजें फेवरेबल हैं जिससे मैं कृष्ण की ओर बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, ऐसी चीजों को हम पालन करें। तुम जैसे मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं बहुत कुछ खाने पीने बाहर और उससे आपका मन विचलित होता है, तो आप समझ रहे हैं कि अरे ये ठीक नहीं है, तो हम उसको बंद करें। तो क्या खाना पीना बंद कर दें सब? नहीं, सब खाइए, लेकिन भगवान को अर्पण घर पर बनाइए, अर्पण कीजिए, खाइए, क्यों नहीं खाइए, सब कुछ खाना अलाउड है। प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते, भक्ति में कुछ मना नहीं है, कोई मना नहीं किया खाने के लिए, बस अर्पण करके खाएं। सो पहली चीज कि ऐसी कोई चीज ना करें जो आपके मन को, आपके चेतना को डाइवर्ट कर रही है। एज अ स्टूडेंट अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, उस चीजों को बहुत जल्दी त्याग देना चाहिए। मान लीजिए कि आप ऐसे संघ में हैं जो लोग बिल्कुल भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप कहते भी हो तो वो सुनना नहीं चाहते, आपके फ्रेंड्स अरे ये सब बकवास है, ये सब बुढ़ापे में करना, ये तुम कहाँ इसमें फंस गई, ये सब चीजें नहीं होना है, अभी पढ़ाई करो, अभी तो तुम्हारे खाने खेलने की उम्र है, ये सब बुढ़ापे की बातें मत करो, ये बाबा जी मत बनो, सन्यासी मत बनो, पंडित मत बनो, ये सब चीजें। तो हम ऐसे संघ में हैं तो हम कैसे करें भक्ति? तो क्या हम तो सब कुछ तो छोड़ नहीं सकते, फ्रेंड्स को भी छोड़ दो, खाना भी छोड़ दो, ऐसे थोड़ी होगा, तो कहीं ना कहीं तो है। तो क्या करें, प्रयास करें कि हम उसको थोड़ा कम करें और जब घर पर आए तो हम अपनी उस चेतना को पुनः लाएं कि नहीं नहीं वो लोग समझते नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सो इस तरह से हमें प्रयास पहला ये करना है कि जो चीजें विरोधी हों उनको हम दूर रखें। और अपने अंदर गुण क्या लाने हैं, आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बनना है। देखिए अगर आप भक्ति करना चाहते हो और स्टूडेंट लाइफ में भी भक्ति, तो बहुत अच्छा है कि अपना एक अच्छा उदाहरण बनिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट आपको देखकर उनको इच्छा हो कि अरे क्या कर रही हो, तुम्हारे पास आए भाई क्या कर रही हो। आपको देखो मैं रोज सुबह 6:30 बजे से मेडिटेशन करती हूँ, इसके लिए मेरा बहुत अच्छा पढ़ाई हो, अच्छा ठीक है हम भी करना चाहते हैं, वेरी नाइस। तो एक सुंदर उदाहरण बनिए विद्यार्थी जीवन में, तो सुंदर उदाहरण बनकर आप अन्य विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा देंगे और आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स हो जाएंगे जो मदद करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। सनत आपका क्या प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे सवाल था कि परमात्मा का मतलब कृष्ण का एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, तो क्या सोल का भी एक स्पिरिचुअल फॉर्म होगा?
वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न। सो भगवान का तो स्पिरिचुअल फॉर्म है, तो क्या सोल का भी स्पिरिचुअल फॉर्म होता है? निश्चित, बिकॉज हम उनके ही अंश हैं। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, सो वी आर ऑल पार्ट्स। सो क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो जो गुण उनमें हैं वो गुण हमारे अंदर भी हैं, और जैसा उनका आध्यात्मिक रूप है वो हमारा भी है। तो फिर अभी कहाँ गया वो आध्यात्मिक रूप, दिखाई क्यों नहीं दे रहा हमें, अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये तो इतना बेकार रूप लिया हुआ है, बीमारी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कभी कभी व्यक्ति मर जाता है, दूसरा लेता है, तो कहाँ गया वो, हमें क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इस समय भगवान कहते हैं वो ढका हुआ है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, है रूप लेकिन आवृत हो गया, ढक गया है। सो जब ये आवरण निकल जाएगा तब वही रूप प्रकट हो जाएगा। बहुत अच्छा। सो सोल ऑल्सो हैज अ फॉर्म, सोल इज नॉट फॉर्मलेस। प्रभुपाद एक उदाहरण और देते थे कि अगर सोल फॉर्मलेस नहीं होता तो फिर सोल अगर फॉर्मलेस होता, मान लीजिए कि सोल तो पूरा फॉर्मलेस है, तो भगवान भगवान के इतने सुंदर रूप है, तो फिर भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं तो कैसे करेंगे, लीलाएं कैसे करेंगे भगवान? सो सोल ऑल्सो हैज फॉर्म। ओके थैंक यू। एंड सोल हैज अ स्पिरिचुअल फॉर्म, जब हम लोग मुक्त होंगे तो उसको निश्चित प्राप्त करेंगे। समृद्धि आपका क्या प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, आज का मेरा जो प्रश्न है वो बहुत ही डिफरेंट है कि क्या भूत प्रेत जैसे कोई चीज होते हैं? जैसे कि मैं अपने गांव में देखती हूँ कि कई सारे औरतें या फिर पुरुष के शरीर पे कहते हैं लोग कि भूत प्रेत आते हैं या फिर देवी देवताएं आते हैं। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, कई लोग इसे सच मानते हैं, तो क्या ऐसा कुछ सच है कि नहीं? कि मतलब ऐसा होता भी है तो ये लोग कैसे इस सब चीज से बच सकते हैं?
आप रात के समय ये प्रश्न कर रहे हो और अभी इस समय आप जहां भी बैठे हो दरवाजा बंद कर लो, धीरे से आवाज आने वाली है। ओके सो आपका प्रश्न है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, क्या है? लोग कुछ कहते कि अंधविश्वास है, कुछ कहते कि नहीं आता है, तो क्या है ये स्थिति? शास्त्र समझाते हैं कि हमारे दो शरीर होते हैं। एक शरीर होता है जो स्थूल बाहर दिखाई देता है, ये पंच तत्व का बना हो, जिसको आप देख रहे हो, आंखें देख रहे हो, कान देख रहे हो, नाक देख रहे हो, ये सब चीजें हैं, और ये एक शरीर है। लेकिन इसके अंदर और एक शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वो बना है मन बुद्धि और अहंकार से। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर आत्मा है, मतलब देखिए सूक्ष्म शरीर उसके अंदर आत्मा, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये स्थूल शरीर। तो जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर बना रहता, आत्मा मुक्त नहीं हो जाती मृत्यु के बाद। और ये जो भूत प्रेत इत्यादि की बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास है, शास्त्र के अनुसार इसको स्वीकार किया गया है। तो ये क्या है? सूक्ष्म शरीर है जीव का, स्थूल शरीर चला गया, सूक्ष्म शरीर बचा हुआ है, और किसी कारणवश उसको अगला स्थूल शरीर नहीं मिला है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में है। ये एक एक्चुअली पनिशमेंट है। जैसे किसी ने कोई बहुत गलत काम किया उसको एक पनिशमेंट दी जाती है, पहले ही पनिशमेंट है और उसने कर दिया, जैसे कोई जेल में है तो वैसे ही पनिशमेंट है, अब उसने जेल में भी मारामारी कर दी, किसी का नाक वाक तोड़ दी, किसी का मुंह तोड़ दिया, तो फिर उसको और उठाकर काल कोठरी में डाल दिया जाता, और पनिशमेंट पनिशमेंट पे पनिशमेंट। तो इसी तरह हमें ये जगत में जब हम जब जीवन लेते वैसे ही पनिशमेंट है, फिर जब वो और कुछ ऐसा कर लेता है तो उसको और पनिशमेंट क्या होती है कि फिर वो सूक्ष्म शरीर में रहता है और उसको कुछ समय तक जो उसका अलॉटेड टाइम था उस बॉडी में जो उसने पूरा नहीं किया, उसको उस समय तक बिना स्थूल शरीर के रहना होता है। सो बहुत फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन है, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, ये एक चीज हमें जानना कि अभी आपने सुना कि अरे होते हैं तो क्या करें, अभी सही में दरवाजा बंद कर लें, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता ये सब चीज, घबराने की जरूरत नहीं, वो है निश्चित है, लेकिन घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम ये जो ऐसे लोग होते हैं ये किस पर अटैक कर सकते हैं, किसको प्रभावित कर सकते हैं, सबसे पहले बहुत जो जिनकी विल पावर बड़ी कमजोर होती है, वीक विल पावर वाले लोगों पर ये लोग अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऐसे लोग जो कभी भी भगवान के संपर्क में नहीं है या अच्छी तरह से भगवान की पूजा इत्यादि नहीं कर रहे, मतलब जो करना चाहिए जैसे भगवान का नाम लेना इत्यादि, तो उन लोगों के ऊपर वो निश्चित कर सकता है। और ऐसे कि जो लोग कभी बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, किसी चिंता में, और वो अपने मन के बैलेंस को बनाए नहीं रख पाते, तो मन को जिन्होंने स्ट्रांग कर लिया उनको ये सब चीजें कोई फर्क नहीं है। और आई थिंक समृद्धि आप तो सुबह आते हो, मन को स्ट्रांग करने की हमारी एक्सरसाइजेस चल रही है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट दर्शन, आप कौन?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
हाँ मेरा प्रश्न ये है कि कल आपने बोला था जब इंद्रिया वश में नहीं रहती है, काम वासना होती है, तब हमें भगवान का काम करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें भगवान के और भजन करना चाहिए और सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मतलब भगवान का काम क्या होता है ताकि हमारे इंद्रिया को वश में कर सके?
वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन दर्शन। सो वैसे आप सबको एक और ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले बता दें कि आप में से जिन लोगों ने 4 महीने के रेसिडेंशियल कोर्स के लिए फॉर्म भरे थे, सो उनके इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं, 22 तारीख तक इंटरव्यू चलेंगे, काफ़ी अच्छे काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे हैं, सो आई थिंक आज शायद आखिरी डेट है, अगर आपने नहीं भरा हो सो आज आप भर सकते हैं, आज आखिरी डेट है, लेकिन जिन्होंने भरे उनके इंटरव्यू ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, फर्स्ट राउंड एंड फाइनल राउंड 25 तारीख को है, सो जिन्होंने अभी तक इसका फॉर्म ना भरा और भरना चाहते हो 4 मंथ रेसिडेंशियल कोर्स जो आपको सूचना आई है, तो आज कृपया भर दीजिएगा। और ओके ना आपका प्रश्न था कि इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान के कार्य क्या करने चाहिए, कैसे इंद्रियां वश में होंगी। सबसे पहला है कि भगवद गीता से ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान लेने से हमें समझ में आता है कि इंद्रियां वश में करनी है, नहीं तो कौन सोचता है, कॉलेज में पढ़ते हुए कोई सोचता है कि हमें इंद्रियां वश में करनी है? बिल्कुल नहीं, उसको तो लगता है कि यही करना जीवन का उद्देश्य है। सो इसीलिए हम एक बार एक कॉलेज में से बोल रहे थे तो एक लड़के ने प्रश्न किया कि हमें इंद्रियां मिली किस लिए है, आनंद लेने के लिए आप कह रहे हो इंद्रियों को वश में करो, फायदा क्या, फिर इंद्रियां दी क्यों भगवान ने? तो ये भाव होता है क्योंकि भगवत गीता पढ़ी नहीं, ज्ञान लिया नहीं कि इंद्रियां किस लिए हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं, इंद्रियां उनकी शक्ति का सही उपयोग के लिए हैं, ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान पहले ले, अगर हमें कृष्ण कर्म करना मतलब भक्ति के कर्म करने का अर्थ है ज्ञान ले, दूसरा उस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। कैसे बदलें, आप देखें कि क्या आप कार्य कर रहे हो, जैसे हमने अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमें बाधा ला रहे हैं जीवन में, तो हमें उसको दूर करना है, तो इंद्रिय संयम हमारा किससे दूर जा रहा है? तो हमने देखा कि इंटरनेट देखने से, इंटरनेट पे इधर उधर की चीजें देखने से हमारा बिल्कुल इंद्रिय संयम नहीं रह रहा है, तो फिर छोड़ देना उसी जगह। हमें अगर वीडियो देखने की इच्छा है, भगवान के वीडियो देख लें, भक्ति से रिलेटेड वीडियो देख लें, वीडियो तो देखना ही है हमें क्योंकि मन बहुत कर रहा है, तो अच्छे वीडियो देख लें, कृष्ण कर्म हो जाएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रसाद लेना, ये भी कृष्ण कर्म है क्योंकि उससे इंद्रियां बहुत जल्दी संयम में आती हैं, तो उसको भी हमें करना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजों को अगर हम करें जो हमने अभी पिछले 1-2-3 सेशंस में बताई और जो हम रोज सुबह 6:30 बजे के जो हमारा मेडिटेशन सेशन हो रहा है उसमें भी हम बता रहे हैं, वो सब चीजें मदद करेंगी। ठीक है, थैंक यू। किसका प्रश्न था? ओके, नेक्स्ट कौन है? प्रिंस, आपका प्रश्न हो गया या बाकी है?
जी, हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण
गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि मनुष्य जो अपने बुरे कर्म करते हैं उससे डर क्यों नहीं लगता?
हाँ, बहुत अच्छा है। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है श्रीमद् भागवतम में कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, बुरा अच्छा जो भी, तो उसके कई विटनेस होते हैं, साक्षी जो हमारे कार्य को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और ऊपर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, चित्रगुप्त के पास भी भेज रहे हैं, भगवान के पास भी भेज रहे हैं। लेकिन कौन कौन से हैं और लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो व्यक्ति पाप करने से डरता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे किसी ने नहीं देखा तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जानता नहीं है कि आप अंधकार में भी करो, पानी के अंदर घुसकर करो, हवा में उड़कर करो, कहीं करो, सब भगवान के पावरफुल कैमरे लगे हुए हैं, सब जा रहा है वहां पर इंफॉर्मेशन। सो ये अज्ञान कि अगर मुझे कोई देखेगा नहीं तो मुझे कुछ होगा नहीं, ये पाप करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, पाप की जड़ क्या है? भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना कि भगवान सब चीज के मालिक हैं। नहीं, मैं मालिक हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं भोग कर सकता हूं, मैं एंजॉय कर सकता हूं, ये मानना कि भगवान भोगता है ये नहीं, तो इस दृष्टि से भी, इस कार्य के कारण भी पाप प्रारंभ हो जाता है। तीसरा कारण, हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो वश में नहीं होती, इसलिए पाप करने वाला व्यक्ति कभी कभी जानता है कि वो गलत कर रहा है, थोड़ा डर भी होता है, लेकिन वो इंद्रियां इतने ऐसी फोर्स आते हैं, वेग है। अर्जुन ने ये प्रश्न किया था, भगवद गीता में ही ये प्रश्न है अर्जुन ने किया कि आप बताइए, 3rd अध्याय कल जो हम लोग कर रहे थे ये उसका यही था, अर्जुन का भी यही प्रश्न था कि ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति विवेकी पुरुष की भी इंद्रियों को हर लेता है, वो अपना इंद्रियों को वश में करना चाहता है, लेकिन हरंती विश्व प्रसभम मनः, अर्जुन कहता है ये हरण कर लेती है इंद्रिया हमारे मन को, तो ऐसा क्यों होता है, पाप क्यों करता है व्यक्ति? पापम चरति पुरुषः, भगवान कहते कामेश क्रोधेश रजोगुण संभव, कि वो काम वासना इतनी तीव्र हो जाती है कि वो देख नहीं पाता। जैसे हम लोग, चलिए अभी आपने प्रश्न किया है तो लेट्स डिस्कस अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि हम लोगों ने कई ऐसे इंसिडेंट सुने जहां स्टूडेंट्स का या लड़कियों को, जैसे दिल्ली में एक बहुत फेमस निर्भया केस हुआ था। सो जो व्यक्ति ने इतना घृणित पाप कर दिया उस एक स्टूडेंट के प्रति, सो कैसे कर सकता है ये सारी चीजें कैसे? इसका प्रभाव मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव था। क्षमा चाहते हैं, आप लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो मीडिया का, क्योंकि देखते हैं वो सब चीजें, वो देख देख कर प्रभाव पड़ गया और पाप करने के लिए व्यक्ति, और कितना घृणित पाप उसकी जान ले ली। तो ऐसी चीजें ये कौन कर सकता है? व्यक्ति ऐसा गलत पाप क्यों करते हो? डर क्यों नहीं लगा उनको उस समय? भले बाद में उनको फांसी मिली हो, कुछ भी हो, लेकिन उस समय डर क्यों नहीं लगा कि मैं क्यों नहीं? बस वो हावी हो गया उनके ऊपर, वो समझ नहीं पाएगी इसका क्या कर रहे हैं और क्या प्रभाव होगा, या फिर दूसरे दृष्टि में उन्होंने सोचा होगा हम तो बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञान ना होने के कारण, सही मार्गदर्शन ना होने के कारण, सही संग ना होने के कारण हम लोग ये पाप को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं और सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। शुभजीत, क्या प्रश्न आपका?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक है कि भगवान को एकादशी का व्रत बहुत पसंद है, तो इसके बारे में एक डिटेल सेशन।
आप म्यूट पे चले गए। शिवजीत, अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ, सॉरी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो क्या हुआ। पहले तो आ रही थी एक प्रश्न, एकादशी का हमने सुना, आगे क्वेश्चन सुन।
हरे कृष्ण।
हाँ हरे कृष्ण, आवाज आ गई।
हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम भगवान को डिवोटी सखा और माता पिता के रूप में देखते हैं, तो अगर उनका कुछ क्वालिटी हम अगर डेवलप करना चाहते हैं हमारे ऊपर, तो वो कौन सा क्वालिटी होगा और वो मतलब किस गाइडलाइन से होगा?
थैंक यू। सो यस, एकादशी के ऊपर करेंगे एक स्पेशल सेशन, क्यों जरूरी है। एकादशी को वैसे माधव तिथि कहा जाता है, भक्ति जननी, मतलब एकादशी ये भक्ति की जननी है और माधव तिथि मतलब भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसका पूरा इतिहास है, क्यों प्रिय है और क्या इसमें विशेषता है, क्यों वैष्णवगण इतना महत्व देते हैं एकादशी को। सो इसीलिए निश्चित, वैसे आपको सेशन के लिए रुकने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अगर YouTube पर सर्च करें तो हमने एकादशी के ऊपर कई लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो एकादशी का महत्व क्या है। वो चैनल है हरे कृष्णा चैनल YouTube, हरे कृष्णा टीवी का। सो आपको उस पर मिल जाएंगे, हमने बहुत सा उस पर कम से कम 8-10 हमारे लेक्चर हैं एकादशी के ऊपर। पहला लेक्चर उसमें एकादशी का महत्व पर है, फिर दूसरा लेक्चर क्या एकादशी, अन्य अन्य जो अलग अलग एकादशी है उसके विषय में है। आई थिंक आप YouTube पे हमारा नाम डालकर और एकादशी डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आपको वेट नहीं करना है नेक्स्ट सेशन को, ठीक है? ऑलरेडी हमने बोला हुआ है उसके लिए। ओके, जो दूसरा था कि अगर हम भगवान को माता पिता के रूप में देखते हैं या क्या, तो क्या गुण उनके हमें लाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला है हमें उनकी सेवा का प्रयास करना, चाहे आप माता पिता के रूप में देख रहे हैं किसी भी रूप में, लेकिन उनकी सेवा करनी है, वो बहुत जरूरी है। सो हमारे अंदर ये हमें पहला गुण लाना है कि हम उनकी सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हम अपने माता पिता की करें या अन्यों की करें, तो कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। सो पहली चीज सेवा, उसको बहुत जरूरी आपको लेना है वो गुण को। और दूसरा गुण अगर आपने सेवा का ले लिया, तो फिर अन्यों को कैसे मदद कर सकते हैं। एक तो आप खुद भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन अब आप दूसरों को कैसे मदद कर सकते हो, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों के लिए कभी कभी पूर्ण अपना भी जीवन देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह हमें वो गुण लेना है कि हम कैसे दूसरों को दे सकते हैं। और तीसरी चीज, जैसे भगवान हरेक का पोषण करते हैं, हरेक का ध्यान रखते हैं, ऐसे भी व्यक्ति का जो पापी है, जो विरोधी है, उनको भी भगवान सूर्य प्रकाश बंदनी कर देते हैं उनका। तो हमें वो गुण सीखना है कि भगवान सबको समान देखते हैं। तो हमारे जीवन में अगर कोई हमारा बुरा भी कर रहा है या अच्छा भी कर रहा है, हमारे लिए दोनों समान है। ऐसी चीजों को कुछ हम सीख सकते हैं। थैंक यू शुभजीत, बहुत अच्छे प्रश्न है। पिनाली मत जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
हरे कृष्ण।
मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग गृहस्थ हम लोग विकर्म और कर्म को कैसे मतलब बॉयकॉट कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। और सेकंड, आपने जो बोला कि फ्रेंड्स मतलब बीइंग स्टूडेंट, फ्रेंड्स तो हम छोड़ सकते हैं, बट व्हाट अबाउट आर पेरेंट्स और स्पाउस एंड फैमिली मेंबर्स जो ऑलरेडी होते हैं, और उन लोगों से फिर कैसे डील करें जो हम लोगों को इस सब चीजों में रोकते हैं, और क्या करना चाहिए उसके लिए।
थैंक यू, वेरी नाइस। सो एज गृहस्थस कैसे आप उस चीज का पालन कर सकते, कर्म और विकर्म को कैसे आप अवॉइड कर सकते और केवल कर्म करें। और दूसरा प्रश्न कि कैसे फैमिली में रहते हुए या घर में रहते हुए कैसे जो सब चीज है, उन लोग को सबको तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या करना, डील कैसे करना है। सो पहली चीज है कि विकर्म से कैसे दूर रहें। तो गृहस्थों के लिए नियम बनाए गए हैं, अगर वो गृहस्थ जीवन के नियम का पालन करते हैं तो वो बहुत आसानी से इस विकर्म और कर्म के बंधन से छूट सकते हैं। गृहस्थी क्यों, कोई भी, लेकिन गृहस्थों के लिए नियम है। क्या नियम है कि उनको जैसे वो जो जीवन है, प्रयास करना चाहिए कि वो कृष्ण केंद्रित जीवन हो। आपका पारिवारिक जीवन चले, पारिवारिक जीवन में रहना कोई गलती नहीं है, लेकिन पारिवारिक जीवन भी कैसा हो, कृष्ण केंद्रित हो। तो तो हम कैसे कितना उसको कृष्ण केंद्रित बना सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी गृहस्थ थे लेकिन वो कहते लिखते हैं कि जब मैं ऑफिस से घर में आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं गोलोक में आ गया। पता नहीं वो संभव है कि नहीं, कि घर को गोलोक बनाते हैं नरक बना, पता नहीं जो भी अनुभव आप लोगों को होता हो घर आने से। मगर ये एक भाव होना चाहिए कि घर ऐसा वातावरण होना चाहिए कि आप अनुभव कर सके। जैसे उदाहरण के लिए आप प्रारंभ कैसे कर सकते हो, घर में कौन से चित्र लगे हैं सब जगह, आप उससे प्रारंभ कर सकते हो। क्योंकि घर में आपने शेर का चित्र लगा रखा है, कुत्ते का चित्र लगा रखा है, क्या लगाया है, तो आप उसको हटाइए और सब जगह कृष्ण के चित्र लगाइए। ये प्रारंभ, इसमें तो आपको कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई घर वाले विरोध नहीं करेंगे, तो ये प्रारंभ हो जाता है आपका भक्ति का मार्ग कि विकर्म से दूर जाना। क्योंकि बार बार वो शेर को देख देख के वो चेतना वैसी हो जाती है, तो इसलिए कृष्ण का कर्म, मतलब घर का वातावरण पहले ही बदलने का प्रयास कीजिए, जिसका प्रभाव घर वालों पर भी हो। अन्य घर वाले जो हो सकता है भक्त ना हो तो उन पर प्रभाव होगा। सो आप ये कर दीजिए। दूसरा आप ये कीजिए कि अगर घर में ऐसा भोजन नहीं बनता जो भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता, ऐसा भोजन बन रहा है जो भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता, तो फिर कम से कम थोड़ा सा कुछ बनाकर भगवान को कुछ अर्पण करना शुरू कीजिए जो अलग से हो, और वो अन्यों को भी खिलाइए। तो ये दूसरी चीज, आप विकर्म से बच जाओगे। और जैसे नियम है, अगर मान लीजिए कि घर में आप पालन नहीं कर सकते, प्रयास तो यही होना चाहिए सारे नियम पालन हो, तो उसको भी हमें पालन करना है। सुप्रसाद लेना शुरू कीजिए। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घर में कभी कभी हम लोग ज्यादातर देखते टीवी चलता है, गाने चलते हैं, फिल्मों के सॉन्ग चलते हैं, और आप शायद उसी में बैठकर जब भी करते हैं, टीवी चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, और आप भी जब देख जब कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय चौका लग गया हरे कृष्ण। सो वो उस तरह का आपका जप अगर है तो उसको अवॉइड कीजिए, जप को महत्व दीजिए। ये आप घर में कर सकते हो। और जो गाने इत्यादि सुनते रहते हैं तो प्रयास कीजिए कि अगर 24 घंटे में से 10 घंटे वो गाने चलते हैं तो 1 घंटा भजन चल सके सुबह सुबह, लोगों को भी अच्छा सबको लगे। तो इस तरह से ये कुछ चीजों का बदलाव आप करेंगे तो आराम से विकर्म से दूर जा सकते हैं। और यही मार्ग है कि आप घर वालों को, अगर आपको भक्त बनाना है, मित्र को इत्यादि, सबसे पहले एक अच्छा उदाहरण बनिए, भौतिकता से भी, भौतिक स्तर पर भी, केवल आध्यात्मिक नहीं कि भक्त आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, बस अभी आप, मैं जप कर रही हूं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, वो ठीक है, लेकिन आप उनसे कैसा संबंध रखते हैं, अपने परिवारजनों से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, कि उनको लगना चाहिए कि भक्ति करने के बाद इसमें बहुत बदलाव आ गया, बहुत अच्छी हो गई है। सो वो लोग फिर और आपके साथ मतलब उसको जानना चाहें, तो ये हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा, जितना हो सके प्रसाद खिलाइए घर वालों को, फ्रेंड्स को इत्यादि, और जितना हो सके कभी अगर पढ़ने की किसी में रुचि है तो छोटी सी बुक्स प्रभुपाद की दे दीजिए। मतलब अपने प्रयास धीरे धीरे करते रहिए, और फिर प्रयास ये भी हो कि वो उनको किसी से मिला दें, जो आप और कोई गृहस्थ भक्त हो वहां पर कोई उनसे मिलाएं, क्योंकि घर वालों का प्रचार कोई स्वीकार नहीं करता। हम भी अगर अपने घर वालों को प्रचार करेंगे तो वो लोग हमें भगा देंगे कि बात जाओ बाहर जाके करो जो करना है प्रचार। सो इसीलिए दूसरों को भी मिलाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 8:30 हो गया, अभी हमें बंद करना है। एक आखिरी क्वेश्चन है, सो उसको ले लेते हैं फिर उसको समाप्त करेंगे। यस, प्रश्न करिए। कौन है? थैंक यू, धन्यवाद आप सबका, बहुत अच्छा लगा। और आशा करते हैं आप में से कई लोगों से कल सुबह फिर मिलेंगे 6:30 बजे। और ये जो भगवद गीता का सेशन है, ये अब अगले शनिवार को, जैसे हम हर शनिवार रविवार कर रहे हैं, तो नेक्स्ट शनिवार हम 5वां अध्याय, 4 अध्याय हो गए हैं भगवद गीता के, अब 5वां अध्याय और फिर 5वां और 6ठा आने वाले शनिवार और रविवार को हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।